एडवांस पार्टी के द्वारा इनका कार्य संपन्न हो रहा है और संपन्न होने के बाद जैसे ही वो एडवांस संगठन तैयार हो जाएगा वैसे ही ब्राह्मणों के संगठन की जो पुरानी दुनिया है जिसकी सत्ता असुरों के हाथ में चली गई, कन्वर्टेड ब्राह्मणों के हाथ में चली गई, वो कन्वर्टेड ब्राह्मण जो कम कला के ब्राह्मण होते हैं और द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, भारत का नाम बदनाम कराते हैं, दूसरे धर्म पिताओं और उनके फॉलोअर्स का नाम बाला करते हैं और भारत को धोखा दे जाते हैं, हैं पावरफुल आत्मा क्योंकि भगवान का ज्ञान उन्होंने भी कभी लिया था, लेकिन पावरफुल होने पर भी वो ज्ञान की गहराई को नहीं पकड़ते। ज्ञान दाता ने जिसमें प्रवेश करके ज्ञान दिया है उस व्यक्ति का आधार लेते हैं। क्या परमात्मा शिव है ज्ञान सुनाने वाला और वो प्रवेश करता है राम और कृष्ण में, कोई राम कृष्ण का भगत बन जाए और शिव को कोई महत्व ना दे, एक तो है शिव को महत्व देने वाली आत्मा और एक है रामकृष्ण देहधारियों को महत्व देने वाली आत्मा, तो कौन सी श्रेष्ठ हुई? जो मुख से सुने हुए ज्ञान को महत्व दे वो है शिव को महत्व देने वाली, क्योंकि ज्ञान है निराकार चीज, और जो साकार देहधारियों को महत्व दे वो हुए देह को महत्व देने वाले देह अभिमानी। तो देवान से पैदा होने वाले हुए राक्षस और ज्ञान से पैदा होने वाले हुए देवता है। देवताओं की ज्यादा से ज्यादा संख्या है सिर्फ 33 करोड़, जो भगवान के ज्ञान को सुनते हैं और इस सृष्टि पर आकर के सुख का स्वर्गीय सृष्टि का अनुभव करते हैं। बाकी इतनी दुनिया जो बढ़ी हुई है 500 700 करोड़ मनुष्य हैं इस दुनिया में, वो सब आसुरी संस्कार वाली आसुर। अब ये आसुरी दुनिया सब ध्वंस होने वाली है, एटमिक एनर्जी बनी ही इसलिए कि जैसे ही नया संगठन तैयार हो जाए वैसे ही पुरानी दुनिया का 5-7 रोज के अंदर खेल खड़ा सा हो जाए। वो होगा चतुर्थ विश्व युद्ध, उससे पहले होना है महाभारी महाभारत ग्रह युद्ध जिसके आसार अभी भारत में देखे जा रहे हैं। इसका पक्का प्रूफ यह है कि भारतवर्ष में जितनी राजनीतिक पार्टियां पनप रही है उतनी दुनिया के किसी भी देश में राजनीतिक पार्टियों की संख्या ज्यादा नहीं है, तो सब आपस में लड़ रहे हैं। भारतवर्ष में जितने धर्म की आत्माएं ज्यादा से ज्यादा संख्या में पनप रही है, इतनी ज्यादा से ज्यादा धर्मों की संख्या, ज्यादा से ज्यादा धर्म के धर्मावलंबी दूसरे देशों में, क्रिश्चियन धर्मखंड है तो वहां क्रिश्चियन से ही ज्यादा होंगे, दूसरे धर्मखंड लोग ना के बराबर, बौद्ध धर्मखंड होगा तो बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स ही वहां ज्यादा होंगे जैसे तिब्बत, दूसरे धर्म के लोग उतनी संख्या में ज्यादा संख्या में नहीं। एक दुनिया की एक ही ऐसी राजधानी है जहां सब धर्मों ने अपना राज्य गमा किया है, दिल्ली। आज भी देखा जाए तो दिल्ली एक ऐसा स्थान है जहां मंदिरों की जितनी बहुतायत है उतनी बहुतायत गिरजाघरों की भी है, उतनी बहुतायत मस्जिदों की भी है, उतनी बहुतायत गुरुद्वारों की भी है। माना हर धर्म का वर्चस्व जो है वो भारत में ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज में, और दिल्ली उसकी कैपिटल है। ये दूसरा धर्म का प्रूफ। तीसरा प्रूफ है जितने राज्य इस छोटे से देश में हैं और राज्यवाद के आधार पर जितना ये देश आपस में लड़ रहा है उतना दूसरे किसी देश में इतना झगड़ा नहीं। जो एमपी के लोग हैं वो अपने राज्य को बहुत बढ़ावा देना चाहते हैं, तमिलनाडु के लोग हैं वो अपने राज्य को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, यूपी के लोग हैं यूपी को ज्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं, बंगाल के लोग हैं तो बंगाल को ज्यादा बढ़ावा, आंध्र प्रदेश के लोग हैं तो बस तेलुगु देशम पार्टी ही सब कुछ बने संसार में, वो ही सब कुछ है। ऐसा माहौल बनता चला जा रहा है, राज्यवाद के आधार पर बहुत अंदर अंदर आग भड़क रही है। ऐसे ही जितनी इस छोटे से देश में भाषाएं हैं और भाषाओं की संख्या है, इतना दुनिया की किसी भी देश में इतनी भाषा नहीं है। एक भारत देश ही है जहां सब तरह की भाषाएं पनप रही है। जितने राज्य उतनी भाषाएं, और भाषाओं को लेकर के आपस में झगड़ा भी बहुत हो रही है। तमिलनाडु में चले जाइए और वहां हिंदी बोलना शुरू करिए, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। हिंदी को वहां ठीक ही नहीं समझते, हिंदी भाषा कोई वहां पढ़ता ही नहीं, सब तमिल को प्रेफरेंस देते हैं। एक मलयालम ऐसा है दक्षिण भारत की भाषाओं में, वो देश दक्षिण भारत के राज्यों में जहां सब प्रकार की भाषाएं जो है पढ़ाई जाती है, क्योंकि वो एजुकेटेड लोग वहां जाते हैं। लेकिन फिर भी मलयालम भाषा को बहुत महत्व दे रहे हैं, हिंदी भाषा को वहां भी मलयालम माना केरल में भी उतना महत्व नहीं, क्योंकि उनकी बुद्धि में ही नहीं है कि भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो हिंदी भाषा में बोलता है या मलयालम में बोलता है या कन्नड़ में बोलता है या तमिल भाषा में बोलता है। जब उनको ये ज्ञान मिलेगा तो वो समझेंगे इस भारत की मुख्य भाषा अभी भी ज्यादा से ज्यादा लोगों में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। हैं तो बीसियों भाषाएं हिंदुस्तान में, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो जनगण की भाषा है वो कौन सी भाषा है भारतवर्ष में, कौन सी भाषा है? हिंदी है। तो जो हिंदी भाषा है, जनजन की भाषा है, उसी में आकर के भगवान बोलेगा ना। हिंदी ऐसी भाषा है, भगवान की भाषा, उसका प्रूफ है। भगवान आकर के जिस भाषा में बोलेगा वो भाषा सबसे सहज होगी, लिखने में भी सहज, पढ़ने में भी सहज, सुनने में भी, बोलने में भी सहज, और समझने में भी सहज, वही भगवान की भाषा हो सकती। जैसे भगवान आकर के जो ज्ञान सुनाता है, एक तो मनुष्यों का ज्ञान होता है, मनुष्य आज की दुनिया में जो ज्ञान दे रहे हैं वो डॉक्टरों का ज्ञान होता है, डॉक्टरी के पढ़ाई के कॉलेज होते हैं। मनुष्य आकर के जो ज्ञान दे रहा है अभी सृष्टि में, मनुष्यों का ज्ञान में वकालत का ज्ञान होता है, जज बनते हैं। ऐसे ही आज की दुनिया में इंजीनियर्स बनते हैं, इंजीनियर्स जो है उनकी भी पढ़ाई है, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे कॉलेजेस है, वो भी मनुष्यों की पढ़ाई है। लेकिन भगवान आकर के जो पढ़ाई पढ़ाता है वो इतनी सिंपल पढ़ाई है कि उसका सार और उसका तंत्र जो है वो 7 दिन के अंदर समझा जा सकता है। कोई गरीब हो, कोई रईस हो, समझदार कोई 8, 10, 15 वर्ष का बच्चा हो या कोई बूढ़ा हो, कोई बीमार हो या कोई स्वस्थ व्यक्ति हो, हर एक को भगवान का जो ज्ञान है वो बुद्धि में बैठ सकता है। लूला लंगड़ा हो या शरीर से स्वस्थ, भगवान का ज्ञान सब ले सकते हैं और सिर्फ 7 दिन में उसका सार समझ सकते हैं। इतना सहज ज्ञान है भगवान का, और उसकी फीस भी कुछ नहीं। भगवान आकर के जो ज्ञान सुनाता है, आचार्य रजनीश की तरह ऐसे शिविर नहीं होते हैं जहां पैसा लिया जाए। अगर पैसा लिया जा रहा है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में, तो समझ लो वहां वो दूसरे दूसरे धर्म के जो कन्वर्ट हुई आत्माएं हैं वो वहां घुस गई, इसलिए वो पैसे की मांग भी कर रही। अभी भी जो ईश्वर का सत्य ज्ञान है वो जहां कहीं भी दिया जा रहा होगा वहां पैसे की मांगने का कोई सवाल नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान आकर के ज्यादा खर्च नहीं कराता, कम खर्च में बड़े से बड़े धर्म की स्थापना करा देता है। निकलावे तब हो प्रभुपूर्ण, हमारा झंडा ऊंचा रहे, हमारा विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। वो तो कपड़ा दिखा देते, कपड़ा समझते, अब कपड़े का झंडा वो कैसे विश्व विजय करेगा, ये तो शरीर रूपी तीन वस्त्र है, ये शरीर क्या है, वस्त्र है। इन वस्त्रों शरीर रूपी वस्त्र को आत्मा धारण करने वाली है। आत्मा एक शरीर छोड़ती है और दूसरा शरीर लेती है, जैसे कोई एक कपड़ा बदलता है और दूसरा कपड़ा पहन लेता है, जैसे रंगमंच होता है तो एक ही व्यक्ति जो है चार चार पार्ट बजाता है, एक तरह का कपड़ा पहनता है तो एक पार्टधारी, दूसरे तरह का कपड़ा पहनता है तो दूसरा पार्टधारी, तीसरे तरह का कपड़ा पहनता है तो तीसरा पार्टधारी, ऐसे ही ये आत्मा भी पार्टधारी है जन्म जन्मांतर। तो ये तीन शरीर रूपी वस्त्र हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर, तीनों वस्त्रों का कार्य अभी प्रैक्टिकल में चल रहा है, और किसी युग में भगवान नहीं आता। त्रिमूर्ति सेवक तीन मूर्तियों को लेकर के सिर्फ कलयुग के अंत में जब एटम बम बन जाते हैं, इस पुरानी सृष्टि का विनाश होना होता है, तब ही आता है। आता है तब भी एटमिक एनर्जी तैयार होती है, और जाता है तो भी एटमिक एनर्जी विस्फोट होती है और काम पूरा हो जाता है। तो तीन मूर्तियों के लिए 100 साल के संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में 30-33 साल तीनों मूर्तियों के लिए बटे हुए हैं कार्य के लिए। ब्रह्मा के 30-33 साल तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा था 68-69 में 18 जनवरी को, तभी 33 साल पूरे हो गए। शंकर की तीसरी मूर्ति के 30-33 साल वो भी पूरे हो गए, माने 66-67 साल पूरे हो चुके। अब तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने का थोड़ा अंतराल का टाइम रहा हुआ है, उसको भी 3-4 साल में प्रत्यक्ष होना।
दो मूर्ति पार्ट हो गया बोल रहे ना, दो मूर्ति का, लेकिन शंकर का तो प्रैक्टिकल में स्थापना के रूप में हुआ, विनाश के रूप में
नहीं। स्थापना के रूप में ब्रह्म कुमारी यीशु विश्वविद्यालय में जो ब्राह्मण तैयार हुए हैं, उन ब्राह्मणों को ज्ञान बाण मार मार करके और उनको उनके मनोबल को डाउन करने का काम नहीं हुआ, अनिश्चय बुद्धि बनाने का काम नहीं हुआ,
बुद्धि से गहरा।
कोई भी काम पहले सूक्ष्म में होता है फिर स्थूल में होता है। मकान बनाया जाता है तो पहले बुद्धि में खाका आता है, फिर स्थूल में कागज में खाका खींचा जाता है, वो थोड़ा सूक्ष्म रूप और स्थूल हुआ, फिर प्रैक्टिकल में मकान प्रैक्टिकल में बना दिया जाता है, तो तीन आयाम हुए कि नहीं। तो ऐसे ही हर मूर्ति का जो कार्य है वो तीन रूपों में चलता है। शंकर का भी कार्य जो है वो कार्य संपन्न हो चुका, खाका तैयार हो गया, वो खाका जो है ब्राह्मणों की संगमी दुनिया में विस्फोट करने वाला है। क्या इसलिए मुरली में बोला है, बड़े से बड़ा बॉम्ब है परमात्मा बॉम्ब। ब्रह्मा परमात्मा के रूप में नहीं गाया हुआ है, विष्णु भी परमात्मा के रूप में नहीं गाया हुआ है, परमात्मा के रूप में एक ही हस्ती है जिसे शंकर कहा जाता है, जिसका आदि और अंत नहीं है। शास्त्रों में एक ही देवता है जिसका जन्म नहीं दिखाया जाता और जिनका मृत्यु नहीं दिखाई जाती। कृष्ण का जन्म भी दिखाया जाता है, मृत्यु भी दिखाई जाती है। ब्रह्मा के लिए भी बोला है शास्त्रों में, ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में मृत्यु लोक में खलास हो जाता है, वो भी खलास हो जाता है, वो सबसे नीचे का कपड़ा है, विष्णु बीच का कपड़ा है और सबसे ऊपर की तरफ के में शंकर की मूर्ति है।
और तीसरा मूर्ति से और भी कुछ होगा, माना
प्रैक्टिकल कार्य,
प्रैक्टिकल
कार्य जो है वो विष्णु के द्वारा होता है,
लेकिन ज्ञान तो
वैष्णव संप्रदाय जो है वो अपने को बहुत स्वच्छ समझते हैं, कहते हैं कौन से संप्रदाय के, अरे हम वैष्णव संप्रदाय के हैं, हमारा खान पान रहन सहन सारा उच्च कोटि का है।
माना जो शंकर के थ्रू ज्ञान का बीज चारों तरफ सारी दुनिया में फैलाया जा रहा, हाँ। उसका प्रैक्टिकल करेगा,
प्रैक्टिकल स्वरूप,
लेकिन उससे अलग ज्ञान नहीं रहेगा ना।
नहीं, ज्ञान तो वो ही रहेगा, लेकिन उसमें शुद्धता ज्यादा होगी, मिक्सरिटी नहीं होगी मनमत की, या मनुष्य मत की मैच्योरिटी जो है जैसे ब्रह्मा के द्वारा सुनाया हुए ज्ञान में हुई, या जैसे शंकर के द्वारा सुनाए हुए ज्ञान में रुद्रगण जो है वो 108 रुद्रगण जो रुद्रमाला में गाए हुए हैं वो 108 नंबर बार है, वो 12-12 के 9 ग्रुप से है, 9 धर्मों से आए हुए, वो एक से एक श्रेष्ठ है और एक से एक भ्रष्ट कर्म करने वाले भी, लेकिन है पावरफुल आत्मा है दुनिया की। वो 108 बीज है दुनिया के जिनमें सारी दुनिया समाई हुई है, इसलिए शास्त्र में आया हुआ है कि जब सारी धरती गर्त में जा रही थी तो एक नाव बनाई गई और उसमें दुनिया के सभी बीज, खास खास बीज जो है, वो उस नाव में रख लिए गए ताकि सृष्टि कहीं खलास न हो जाए, कम से कम बीज तो बने रहेंगे। तो ये 108 बीज रूप आत्माएं हैं जिनका गायन हर धर्म में किया जाता है, हर धर्म में वो माला स्मरण की जाती है 108 मणकों, 108 श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जो श्रेष्ठ आत्माएं अभी गुप्त रूप में अपना कार्य कर रही है। ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान दाता भी गुप्त, ज्ञान लेने वाले जो पांडव बच्चे हैं वो भी गुप्त, उनका धन पद मान मर्तबा दान दान धन जो भी कर रहे हैं वो सब इस समय गुप्त रूप में चल रहा है, गुप्त में ज्यादा ताकत होती है, चीज प्रत्यक्ष हो जाती है तो उसमें ज्यादा ताकत नहीं होती, इसलिए शास्त्रों में भी लिखा हुआ है तुलसीदास ने, योग जुगुत जब मंत्र प्रवाहु और फल है तब है जब करिए दुराहु, उसको जितना हम गुप्त रखेंगे उतना ज्यादा उसमें ताकत रहेगी। दान है, हम दान करें, आजकल लोग क्या करते हैं, दान करते हैं और दूसरी तरफ प्लेट लगवा देते हैं, हमने इतना दान किया, तो वो नई दुनिया की स्थापना नहीं कर सकता, वो दान वो अल्पकाल का सुख देगा दुनिया को, सदा काल का सुख नहीं दे सकता। ईश्वर आकर के जो हमें दान करना सिखाता है वो ऐसा है दान करना सिखाता है जो सिर्फ ईश्वर को ही दिया जाए, ईश्वर ही लेने वाला हो और उसके जो फर्स्ट क्लास बच्चे हैं वो ही उसको देते हैं,
इसलिए भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्पण कहते
हैं, ईश्वर अर्पण कहते हैं लेकिन करते किसको है, करते तो पापियों को है, भिखारी लोग आते हैं या साधु संन्यासी दरवाजे पर आते हैं तो दे दिया, अब वो बाहर जाकर के चाहे शराब पीते हो कौन देखता है, और पीते ही है भीख मांगने वाले ज्यादातर आज की दुनिया में सारे ऐसे ही हैं। भगवान की सृष्टि पर बैगर के रूप में आता है जिसका नाम दिया हुआ है शंकर, भर दे झोली भर दे, मांगना सिखाता नहीं है, खुद मांगता भी नहीं है, लेकिन नियम ऐसा बताया हुआ है कि इस ईश्वरीय सेवा के कार्य में जो जितना सहयोग करता है वो अपने लिए जन्म जन्मांतर के लिए कर रहा है, कोई दूसरे के लिए नहीं कर रहा है, या भगवान के लिए कर रहा हो ऐसा भी नहीं, क्योंकि भगवान तो निराकार है, वो परम धाम में तो ले नहीं जाएगा, वो तो निराकारी लोक का रहने वाला है, वो इस सृष्टि पर जिन हस्तियों में आता है वो खुद ही इतनी पुरुषार्थी है कि एक जन्म में रंक से राजा बनने की उनमें ताकत है। जैसे बाबर का मिसाल है, साधारण सिपाही था और साधारण सिपाही से क्या बन गया, भारत का सम्राट बन गया, विक्टोरिया का वजीर, स्ट्रीट लाइट में बैठ करके पढ़ाई पढ़ता था, पढ़ाई पढ़ करके इतना ऊंचा बन गया कि वो वजीर बन के बैठ गया, विक्टोरिया विक्टोरिया को भी चला रहा है, ऐसा करो ऐसा करो वैसा करो ऐसी करो। तो रामकृष्ण की आत्मा है तो खुद ही इतनी पुरुषार्थी है, वो किसी का क्यों लेंगी, उनमें तो खुद ही इतना स्वाभिमान भरा हुआ है, वो किसी से कुछ लेने वाली नहीं है बल्कि सबको देने वाली, वो बड़ी की बड़ी बैंकर्स है, लेकिन भगवान के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, माना अकेले व्यक्ति की धन संपत्ति से स्वर्ग की दुनिया स्थापन नहीं हो सकती, इसलिए सबका कणा दाना का सहयोग लेकर के और नई दुनिया की स्थापना करके चले जाते हैं, देवात्मा बनते हैं, नर से नारायण बनते हैं, नारी से लक्ष्मी बनते हैं,
अच्छे लोगों को नुकसान हो जाता है।
देखो जब गेहूं पीसा जाता है तो उसमें जो लाल रंग का कीड़ा होता है ना वो भी पीस लिया जाता है, इस सृष्टि पर अच्छा कोई नहीं है, ऐसा एक भी मनुष्य छाती ठोक करके नहीं कह सकता कि हम मन से खराब संकल्प नहीं चलाते, खराब वाइब्रेशन नहीं छोड़ते, दृष्टि से हम किसी के प्रति लाल आंखें नहीं करते, वाचा से हम कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, कर्मेंद्रियों से हम कोई कर्म ऐसा नहीं करते जिससे किसी दूसरे के दुख न हो या हिंसा।
तो ये आतंकवादी वो हिसाब से नहीं चलता है ना, ये अभी इंडोनेशिया में प्रॉब्लम है,
ऐसा है
वो किसके लिए किया, क्या होने वाला है?
ऐसा है, आतंकवाद इस दुनिया में तब से आता है जब से इब्राहिम आए इस्लाम धर्म स्थापित, उससे पहले देवताओं की दुनिया थी, कोई प्रकार का आतंक नहीं था भारतवर्ष में। ये 2500 वर्ष की जो हिस्ट्री मिल रही है जब से मनुष्य धर्मगुरु आए हैं इस सृष्टि पर, तब से ये आतंकवाद पहले स्लाइड रूप में था, अभी बढ़ेगा, बढ़ेगा लगातार बढ़ेगा। जो जो अमेरिका अपना महाशक्ति के रूप में संसार के सामने विकराल रूप में छोटे छोटे देशों को हड़प करती जाएगी,
तो एंड कैसा होता?
अब ईश्वरी शक्ति आई हुई है ना,
बहुत लंबा होता तो तकलीफ,
बहुत लंबा कहाँ है, अभी तो आपने पूरी बात सुनी नहीं, आधी बात सुन करके चले गए। यहाँ बताया ना कि जैसे और धर्म पिताएं आते हैं 100 वर्ष के अंदर अपने धर्म की स्थापना करके जाते हैं, चाहे इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, सबने आकर के अपने धर्म के फॉलोअर्स को जो ज्ञान दिया है वो ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष के अंदर दिया, अपने धर्म की स्थापना में 100 वर्ष से ज्यादा टाइम नहीं लगाया। ऐसे भगवान भी इस सृष्टि पर आता है
अभी से,
तो 100 वर्ष अभी से नहीं, सन 36 से ब्रह्मा कुमारी यीशु विश्वविद्यालय का कार्यकाल चल रहा है, 70 साल तो पूरे हो गए, दो मूर्तियों का कार्य पूरा हुआ, अभी तीसरी मूर्ति और ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होगी। अब जो तीन मूर्तियों के कार्य को समझते जावेंगे वो ही पक्के ब्राह्मण यज्ञोपवीतधारी कहे जावेंगे। तीन सूत्र होते हैं यज्ञोपवीत में, वो तीन सूत्र जो है ब्रह्मा विष्णु शंकर, तीनों का ज्ञान का सूत्र है। तीनों के ज्ञान क्या क्या है, ब्रह्मा का ज्ञान क्या है, क्या करता है, शंकर के रूप में जो ज्ञान इस सृष्टि पर आता है वो क्या करता है, क्या ज्ञान है, उसका प्रतिफल क्या होता है, और विश्व के रूप में जो ज्ञान दिया जाता है वो क्या है, क्या प्रैक्टिकल परिवर्तन करता है, इन बातों को जानने वाला ही सच्चा ब्राह्मण। तीन सूत्र धारण करने से सच्चा ब्राह्मण
माने अभी से 30 साल में
30 साल होगा सारा कार्य संपन्न, तीनों मूर्तियों का कार्य संपन्न होता है और सनातन धर्म की सही स्थापना, जो सनातन धर्म विकृत रूप आ गया है 1000 वर्ष के बाद, अब उसका रही भी नहीं सकता।
तो अभी ते अभी विकृत रूप में है ना,
सभी धर्म विकृत रूप में है और सब धर्मों के प्रभाव में, क्योंकि सब धर्मों की संख्या तो 700 करोड़ है और सनातन धर्म वालों की संख्या 33 करोड़ है। उनका धर्म की आत्मा है सनातन से सनातन, पुरानी से पुरानी, उनकी संख्या भी दुनिया में बहुत कम है उनके मुकाबले। तो सारी दुनिया है काजल की कोठरी और थोड़ी सी आत्मा जो है वो उस काजल की कोठरी में अपना कार्य कर रही है, तो उनका संकरण तो लगेगा ना थोड़ा बहुत, काजल की कोठरी में कैसे उसयान हो जाए।
वो फर्क आने वाला वो प्रलय का हिसाब से होता है,
प्रलय होती नहीं कभी दुनिया में, सृष्टि की कभी प्रलय हो रही
होती,
आत्माओं का कभी विनाश नहीं होता, आत्मा अजर अमर में अविनाशी है, सृष्टि भी अजर अमर अविनाशी, सिर्फ उसका रूप बदलता है, सतो प्रधान सृष्टि बनती है और फिर तमो प्रधान सृष्टि। अभी सृष्टि का तमो प्रधान रूप हमारे सामने आता जा रहा है। 30 साल के अंदर और भी जो गनीमत रह गई है वो भी खत्म।
अभी हमारा देश का भविष्य बहुत अच्छा है,
भगवान आया हुआ है इस देश में, भगवान आता है आया हुआ है तो भविष्य तो निश्चित रूप से अच्छा होगा, संसार का सरताज होना चाहिए भारतवर्ष, अभी तो विदेशों का मोहताज है,
नहीं तो जिंदगी का इतना तंग होता है वो नहीं सकता आदमी, इतना परेशान में।
भगवान तो ब्रह्मा के तन में आकर के घोषणा कर रहा है सब धर्म सब धंधों में है नुकसान, जितने भी धंधे अभी फैले हुए हैं वो सब नुकसान को पाएंगे,
नुकसान नहीं किसी को भी शांति नहीं है हर एक लेवल।
जो जितना सच्चाई से कोई भी धंधा कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, वो सफल नहीं हो सकता। ऑफिस से देखिए जाके जो अच्छा काम करने वाला है उसके ऊपर लोड बढ़ाते चले जा रहे हैं, और जो अच्छे काम करने वाले नहीं मस्ती मारने वाले वो मस्ती मार रहे हैं। कारखानों में देखिए जाके, कारखानों में भी यही है, जो दंगा फसाद मचाने वाले हैं, तो जो पार्टीबाजी कर रहे हैं, जो यूनियन बना रहे हैं वो मस्ती मार रहे हैं, और जो वर्कर्स अच्छे अच्छे हैं उनके ऊपर लोड बढ़ता चला जाए। अति का अंत होता है,
जितना जल्दी हो सकता है बहुत अच्छा होता है।
उस अति में हम भी तो पीसे जाएंगे। अगर ईश्वर का आधार ले लेंगे तो वो हमारी सुरक्षा करेगा, उसके बच्चे बनेंगे तो सुरक्षा करेगा, अगर उसके बच्चे नहीं बनेंगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं। घर में आकर माँ बाप के घर में जो बच्चा पैदा होता है, भले गांव में आग लगे तो माँ बाप अपने बच्चों को बचाएंगे, भले गांव में आग लग जाए लेकिन बच्चों को फिर भी बचाएंगे, अपनी जान की बाजी लगा करके भी बच्चों को बचाएंगे,
करके भी करेंगे।
तो ऐसे यहाँ भी भगवान निराकार इस सृष्टि पर आता है, रामकृष्ण वाली आत्माएं जो जन्मण के चक्र में आती हैं उनका आधार लेता है अंतिम जन्म में, मनुष्य तन में आता है, और उनके द्वारा हम ब्राह्मणों की रचना कर रहा है। ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनकर के ये ब्राह्मण तैयार हो रहे हैं, जो मुखवंशावली ब्राह्मण तैयार हो रहे हैं उन मुखवंशावली ब्राह्मण बच्चों की वो ईश्वर जो है वो सहयोगी बन जाता है। मुखवंशावली बनते हैं तो रामकृष्ण की आत्माओं के सामने तो जरूर पहुंचेंगे, उसका प्रोसीजर एक बनाया हुआ। वो प्रोसीजर ये है कि जैसे 9 महीने पेट में बच्चा पकता है और फिर पैदा होके बाहर आता है, तो 9 महीने की भट्टी पकी ना पेट में, 9 महीना दुनिया से उसका कनेक्शन कट गया ना, उस भट्टी में पक करके फिर जो बच्चा पैदा होता है, लाल पैदा होता है, वो बाप का बच्चा कहा जाता है। ये तो स्थूल बात होगी दुनिया की, ऐसे ही परमात्मा के जो बेहद के बच्चे बनते हैं मुखवंशावली औलाद ज्ञान की, उनको जब निश्चय पैदा होता है थोड़ा थोड़ा, तो वो भगवान के घर में पहुंच करके 7 दिन की भट्टी करते हैं। एक दिन आना अपने स्थान से भट्टी में जाने का, और एक दिन वापस आने का, और 7 दिन की वहां भट्टी, और 9 दिन की भट्टी है जिसमें बाहर की दुनिया से कनेक्शन कट कर दिया जाता है। और 9 दिन के अंदर पूरे ही निश्चय बुद्धि हो जाते हैं कि किस तरह ब्रह्मा हमारी माँ है सारी सृष्टि की, ब्रह्मा माने बड़ी थी बड़ी माँ, और जगत पिता शंकर जगत पिता और जगदम्बा के रूप में जो कार्य चल रहा है इस सृष्टि पर वो बच्चे बन जाते हैं। बाप का उनके ऊपर बुद्ध रूपी हाथ वरद हस्त कहते हैं, हमारे ऊपर हमारे सर पे हाथ रख दीजिए, तो इस हाथ की बात नहीं है, जैसे इस हाथ से कोई चीज कैच की जाती है ऐसे बुद्ध रूपी हाथ से भी कोई बात कैच की जाती है, भगवान की वाणी भी बुद्ध रूपी हाथ से कैच की जा सकती है। तो भगवान का बुद्ध रूपी हाथ जिसके ऊपर आ जाएगा तो उसको छत्र छाया मिल गई, उसको क्या चिंता, भले दुनिया का विनाश होगा उन आत्माओं का विनाश शरीर का भी नहीं होगा, और आत्मा तो विनाश की उपाधि है, नई सृष्टि आएगी तो उसमें सब थोड़े ही खलास हो जाएंगे, सृष्टि के बीज कुछ तो बचेंगे, तो जो कुछ बचेंगे उनकी संख्या लाखों की तादाद है, 9 लाख सितारे आसमान में गाए हुए हैं, वो 9 लाख आत्माएं जो है जब विनाश का टाइम होगा हर हर बम बम के बम फटेंगे शंकर जी के, तो उस समय 9 लाख सितारे संसार में ज्ञान की चमक मारेंगे, सारी दुनिया उनके सामने झुकेगी, रिगार्ड करेगी कि ईश्वर के बच्चे नई सृष्टि की स्थापना में सहयोगी बनेंगे। ईश्वरीय ज्ञान अंधश्रद्धा नहीं सिखाता है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं, जो भी बातें हैं वो सब शास्त्रों से टैली की जा सकती है, शास्त्र जो लिखे हैं वो मनुष्यों ने लिखे हैं, भगवान ने नहीं लिखे, धर्म पिताओं ने नहीं लिखे, क्राइस्ट ने आकर के बाइबल नहीं लिखी, कुरान मोहम्मद साहब ने नहीं लिखी, गुरुग्रंथ साहब गुरु नानक ने नहीं लिखा, ऐसे ही भगवान भी जो ज्ञान सुनाता है डायरेक्ट मुख से सुनाता है, वो ज्ञान शास्त्रों में नहीं है कि गीता में श्रीमद भगवद गीता में भगवान का सुनाया हुआ ज्ञान हो, नहीं, वो मनुष्यों का लिखा हुआ। जितने भी शास्त्र मनुष्यों ने बनाए हैं उन शास्त्रों का सार आकर के भगवान आकर के बताता है। कह समझे कवि कह समझे रवि, युक्ति है, कहावत है। कवि कविता करके चले गए, रामायण की कविता हो, महाभारत की कविता हो, भागवत की कविता हो, ये कविताएं कर करके चले गए सब, लेकिन उनके अर्थ क्या है, असलियत क्या है, वो कविता करने वाले जानते थे थोड़ा बहुत, वो भी गए। अब इंटरप्रिटेशन करने वाले अपने अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन कर रहे, लेकिन सही अर्थ उनका शास्त्रों का स्वयं भगवान ज्ञान सूर्य जब इस सृष्टि पर उतरता है तो उनका सही अर्थ बताता है कि रावण को 10 सिर कैसे होते हैं, विष्णु को 4 भुजाएं कैसे होती है, कुंभकर्ण 6 महीने सोने वाला कैसे होता है, उन सब बातों का प्रतीकात्मक अर्थ क्या है, सही से ज्ञान सुना। शंकर की जो मूर्ति है तो उस मूर्ति को ऐसा जोकर क्यों बनाया हुआ है, सर के ऊपर सांप, हाथों में सांप, बाहों में सांप, गले में सांप, कमर में सांप, तू ताड़ू लटक रही है, हाथ में त्रिशूल है, उनको हथियार ही नहीं, वाहन बैल का दिखाया हुआ, उनके बच्चे को वाहन चूहे का दिखा दिया, उनके दूसरे बच्चे को वाहन मोर का दिखा दिया गया, तो ये सब प्रतीकात्मक अर्थ क्या है वो भगवान आकर के समझा सकता है। हम उसको